गीता जो है स्वयं भगवान के मुख में से निकली, इसलिए भगवान की बाणी बाणी है या बाणी जो तो भगवान की बाणी मूर्ति है, भगवान का स्वरूप ही है। हृदय के उद्गार होने से भगवान का हृदय है, या यूं कहो कि भगवान के श्वास, तो गीता है तो भगवान के श्वास ही है, भगवान की बाणी होने से भगवान की बाणी मूर्ति भी है, और हृदय का भाव होने से भगवान का समझो कि हृदय के उद्गार भी है, सब कुछ। तो यहां स्वयं शब्द दिया, उसका श्वास यह है कि और जितनी जो श्वास है सो भगवान के मुख कमल से नहीं निकले, ऋषियों के मुख से निकले। ऋषियों ने सब शास्त्रों की जो रचना की वो वेद के आधार पर की, और वेद जो प्रगट है ब्रह्मा जी के मुख से हुआ, और ब्रह्मा जी जो है सो भगवान की नाभि से उत्पन्न है, जो कमल से उत्पन्न है। ऐसे जो भगवान जिनकी नाभि से कमल पैदा हुआ है वे भगवान विष्णु भगवान कृष्ण है। इस बात को समझाने के लिए यह बात कही कि यह वो गीता है तो भगवान के मुख कमल से दिखे। सर्वशास्त्र मेरी गीता, गीता सर्वशास्त्र मेरी है, सारे शास्त्रों को सार है। भगवान स्वयं गीता की 13वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं, ऋषि गौरवागिन छंदे वीर विदे प्रथा ब्रह्म सूत्र प्रदेश हेतु मत वीर विनिश्चित। ऋषि वीर गौरवागीतम, बहुत ऋषियों ने माने ऋषियों ने बहुत बार जिसका गायन किया है वही बात मैं तेरे को कहूंगा, उसको तो सुन। छंदो वीर विविध पृथक 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 जो छंद माने वेद है, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद, और उन वेदों के बीच के मां जो बात पृथक पृथक रूप से कही है वही बात आज तो मेरे से सुन। ब्रह्म सूत्र प्रदेश हेतु मत भी विनिश्चित ही, हेतु मत भी विनिश्चित ही, हेतु वाला जो निश्चित हेतु वाला जो ब्रह्म सूत्र के पद हैं उनके द्वारा जो बात कही गई है वही बात आज मैं तुझको कहूंगा, तुम उससे सुन। तो सब शास्त्र प्रमाण देकर के ही भगवान आपने उपदेश दे रहे हैं, इससे ये कहना उचित है कि सर्वशास्त्रमयी गीता। और देखते भी हैं इसके बाद जो उपदेश आरंभ किया है वो सब शास्त्रों का सार है, सब शास्त्रों का सार है। तो पहले भगवान प्रतिज्ञा कर करके और फिर उसका उपदेश दिया। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तव्यानि दशे कर्म से पंचतेन्द्रिय गोचरा। एक ही श्लोक के बीच के वहां सब शास्त्रों का भाव भर दिया। भगवान ने 24 तत्व बताए एक ही श्लोक में, ये 24 तत्व सांख्य शास्त्र में बताए प्रकार को भेद है, ये 24 तत्व योग दर्शन में बताए, ये भागवत में बताए हैं, और यही उपनिषदों में उपनिषद ही भेद है। तो वेदों में ये तत्व बतलाया, गीता समृति है तो समृति में भी ये तत्व बतलाया, और शास्त्र है योग दर्शन सांख्य दर्शन दर्शन शास्त्रों में यही बात बतलाई, भागवत पुराण है उनमें भी यही बात बतलाई, सभी के बीच के वहां भगवान यही बात है। भाव ये इसका है कि 5 तो महाभूत और 6ठी बुद्धि 7वां अहंकार और 8वां अव्यक्त प्रकृति, और दस नेता और एक मन, चारा आठ मनुष्य और पांच इंद्रियों का वह सर्वस्तप्रस्तुप्रस्तगं और पांच सूक्ष्म भूत आकाश वायु तेज जल पर्श, तो ये 24 तत्व है। 24 तत्वों का बना हुआ शरीर है। तो इस प्रकार से शरीर क्या चीज है, इसका उपदेश इसमें दिया गया। क्योंकि उसके पहले भगवान ने यह बात कही थी, तत्क्षेत्रं यत यादृच्छ यत विकारि यतश्च यत गति यत प्रभाव से अत समाज से निष्णु इसी गिरगुरदास हेतु मंदिर विभिष्ट। अर्जुन, जो शरीर है यानी शरीर का जो स्वरूप है और जिस जिस विकारों वाला है, शरीर के स्वरूप को और विकारों को और शरीर का जो धर्म है उसको, और ये शरीर किस प्रकार से उत्पन्न है, चारों बातों को तुम मेरे से सुन। इसी प्रकार से थी जो जीवात्मा है उसका जो स्वरूप है, उसका जो प्रभाव है, उसको भी तुम मेरे से सुन। इस प्रकार गीता की 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में यह बात कहकर के और 4थे श्लोक के वह इसकी प्रशंसा की गई कि भावता ने अहंकारो, ये 5वें श्लोक में कहा गया। 4थे श्लोक में प्रशंसा करके के 5वें श्लोक के बीच में ये 24 तत्व बताए, उसके बाद में उसके विकार बताए। इच्छा द्वेष कंद दुखन संघात क्षेत्राधति एतद् क्षेत्र समासे न सविकार उदारितम। इच्छा और द्वेष यानी राग द्वेष, सुख और दुख, चेतना और दृष्टि, और ये सुख शरीर का सुख, ये सब विकार। तो विकार के क्षेत्र माने शरीर को कह दिया, माने क्षेत्र और क्षेत्र के विकार, ये दो बात बता दी। इसी प्रकार से भगवान ने सब बातों का उत्तर अध्याय की समाप्ति पर दे दिया। तो सारे शास्त्रों का सारिश में भर दिया, ये सब शास्त्र वही गीता, ये कहना जो है सो उचित ही है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 शांतां धनं अजरां ध्रुवं नित्यानं बोधसुवां। फिर गीता की महिमा बताई जाती है। सर्वोपनिषदो गावो दौधाकुपान नंदन आस रस सुधी भुक्ता दुग्धं गीता अमृतं है। सारे जो उपनिषद हैं ये तो मन गऊ है, और दूने वाले भगवान गोपाल नंदन साक्षात कृष्ण है, और अर्जुन जो उस दूध के पीने वाला बादशाह है, जैसे बादशाह को देखकर के गा पारती है, इस प्रकार से थी अर्जुन के भाव से भावित होकर के भगवान ने एक अमृत के समान अलौकिक गीता शास्त्र का कथन किया। स्वास्थ्य कहा जाता है कि अर्जुन तो बाजा है, और इस दूध का पान करने वाले कैसा जो दूध है, तो अमृतमय सो दूध है, गीता रूपी जो अमृतमय दूध है इसका पान करने वाला सुधी माने अच्छी बुद्धि वाले, सातु बुद्धि वाले, श्रेष्ठ बुद्धि वाले जो भगवान के भक्त हैं वे भोगता है। इसे दूध का पान करने वाले हैं, अमृत के समान इस दूध का पान करने वाले हैं। बहुत ही महिमा भगवान ने अपने महात्म में बतलाई है। तो गीता के प्रभाव से थी मैं तीनों लोगों का पालन करता हूं। एक भाई गीता का 18 अध्याय का पाठ करता है और दूसरा एक भाई अर्थ और भाव को समझ करके एक अध्याय का पाठ करता है और जो सारा अध्याय मूल का जो पाठ करता है उसको अर्थ का ज्ञान नहीं है। तो 18 अध्याय का जो नित पाठ करता है उसकी अपेक्षा वो श्रेष्ठ है जो अर्थ और भाव के सहित एक अध्याय का पाठ करता है। और उससे वो श्रेष्ठ है जो नित एक प्रकार से भगवान की शरण हुआ, एक श्लोक का अर्थ और भाव सहित समझ करके अपने हृदय के बीच में धारण कर रहा है, उसको एक प्रकार से अपने हृदय में धारण कर लेता है, उसके अनुसार ही अपना अनुष्ठान करता है, उसके अनुसार ही अपना जीवन बिताता है। वह एक श्लोक को धारण करने वाला उन दोनों से श्रेष्ठ है। उनको हृदय के मन समझ कर धारण करना और उसी के अनुसार से चल, ये सबसे बढ़कर है। गीता के बीच के मां भक्ति योग बना हुआ है। शुरू की जो 6 अध्याय है उसमें तो कर्म की प्रधानता है और ज्ञान और भक्ति भी उसके मां शामिल है, किंतु प्रधानता जो है कर्म योग की है, निष्काम कर्म की है। और 7वें अध्याय से लेकर 12 के अध्याय तक 6 अध्याय जो है जो भक्ति प्रधान है। प्रत्येक श्लोक को आप देखो, इस 6 अध्याय के मन ध्यान देकर के पढ़ो, प्रत्येक श्लोक में भगवान का लक्ष्य कराया गया है। भगवान के जहां वचन आते हैं वहां मम मई हैं इत्यादि शब्द आते हैं जो भगवान की बात है। अर्जुन के द्वारा जो शब्द कहे गए हैं उसमें तुम सही भगवान को लक्ष्य कराने वाले शब्द कहे गए। 6 अध्याय के बीच के वहां करीब कोई 250 श्लोक होंगे, उसमें 25 श्लोक माने उसका 10वां अंश भी आपको नहीं मिलेगा। माने ऐसे 25 श्लोक भी साथ मिले कि जिसके बीच के में भगवान का वाचक शब्द में आया हो। इसलिए ये भक्ति करके उत्प्रोत है, इसलिए भक्ति प्रधान नहीं करके कि हम केवल भक्ति कह दे रहे तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी, किंतु थोड़ा विषय प्रसंग के अनुसार ज्ञान का और निष्काम कर्म का भी आया है। अंतिम जो 6 अध्याय है वो ज्ञान प्रधान है। ज्ञान प्रधान होते हुए भी उसके मां भी जो है सो भगवान की भक्ति का विषय है, कर्मयोग का विषय है। तो गीता के बीच के मां कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग कूट कूट करके भरे हुए हैं। जो संसार में कर्मयोगी है उसको सारी गीता प्रतीत होती है, मनुष्य में कर्मयोगी 18 अध्याय में कर्मयोगी भरा हुआ है। जो भक्ति योगी है उसको सारी गीता में भक्ति भक्ति दिखती है। जो ज्ञान योगी है उनको सारी गीता ज्ञान पर की प्रतीत होती है। शंकरानंद जी जो टीका उसको देख रहे थे, माने सारे श्लोकों के मां ज्ञान ही भरे हुए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है गीता अमृत में ज्ञान नहीं है। और बाल गंगाधर तिलक गांधी जी इनको गीता सो प्रतीत होती है कि ये कर्मयोग का ग्रंथ है, कर्मयोग इसमें भरा हुआ है, यानी इसके मन निष्काम कर्म ही ओतप्रोत है। तो जो आचार्य हुए भक्ति के जो आचार्य विष्णु जो हैं, उनको सारी गीता में भक्ति भक्ति दिखती है। बल्माचार्य, रामानंदाचार्य और जितने जो संप्रदाय वाले हैं भक्ति मार्ग के, उनको सारी गीता में भक्ति भक्ति दिखती है। इसमें प्रधान है उनकी रुचि और भाव। गीता एक ऐसी चीज है अपने अपने भाव के अनुसार दिखती है। क्यों नहीं दिखे, भगवान के वचन है, भगवान भी तो सबको अपने अपने भाव के अनुसार दिखते हैं। तुलसीदास जी कहते भी हैं, जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, लेकिन जैसी भावना रही भगवान की मूर्ति ने वैसी देखी। यही बात गीता की है। गीता में भी जिसकी जैसी भावना, जैसा विश्वास, जैसी श्रद्धा प्रेम होता है उसको, वो वैसी दिखने लग जाती है। तो भगवान और भगवान के वचनों की ये एक अलौकिकता है, विशेषता है। गीता के अध्ययन से, श्रवण से, समन से, मनन से, निधि ध्यान से पापों का नाश होता है। आलस, प्रमाद, निद्रा और बहुत से जो हमारे में विकार हैं वे सब दूर भाग जाते हैं। दुर्गुरु का नाम निशान नहीं रहता और उन्हें कोई दृढ़ सुन लेता है, और सद्गुण और सदाचार उसमें अपने आप ही आ जाते हैं। गीता के प्रभाव से उसमें आप ही आ जाते हैं। और ईश्वर की भक्ति तो उसके हृदय में जागृति हो ही जाती है। साथ साथ के वहां ज्ञान और वैराग इनकी भी जागृति हो जाती है। उनका भाव एकदम बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। गीता का प्रभाव अलौकिक है। भगवान ने खुद कहा कि इस गीता का जो अध्ययन करता है उसके द्वारा मैं ज्ञानिक से पूजित होता हूं, और इस मेरे भावों को मेरे भक्तों में कहता है उसके समान तो मेरा प्यारा भक्त दुनिया में न कोई वार, न कोई हैर, न कोई होगा। जयम परमं गुज्यम मत भक्ते से विधाषति, भक्ति में प्राण कृत्वा माम संचयम। न तत्समान मनुष्यु कष्टिन में प्रिय कृत्व है भविता न मे तस्मा दैन्य प्रीत। गीता अध्याय 18 श्लोक अनंतरो सत्र। इसका भाव यह है, ये परम गोपनीय जो गीता शास्त्र है, इस गीता शास्त्र को जो मेरे भक्तों के वहां प्रचार करता है, इसका अर्थ और भाव बतलाता है, इसका व्याख्यान देता है, इसको मेरे भक्तों में धारण कराता है, वह पुरुष मेरी परम भक्ति कर करके मुझको प्राप्त हो जाता है। और उसके समान मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है, और न कोई भविष्य में होगा। इस प्रकार से भगवान ने गीता की महिमा स्वयं सुगाई है। गीता के अध्ययन से उसका तो कल्याण हो ही जाता है, किंतु उसकी कृपा से औरों का भी, भूतों का कल्याण हो जाता है। इसलिए गीता जो गंगा से भी बढ़ करके है, गंगा में स्नान करने वाला मुक्त होता है, ये बात शास्त्रों में बताई है। किंतु ये नहीं कि तो स्नान का कोई ऐसा महत्व हो कि दूसरा कोई उद्धार कर दे, स्नान करने लाभ उठाता है। क्योंकि गीता रूपी जो गंगा में स्नान करता है वो तो अपना भी कल्याण करता है, औरों का भी सब का कल्याण करता है। इसी प्रकार से थी गीता जो है गायत्री से भी बढ़ करके है। गायत्री का जप करने वाला पुरुष मुक्त हो जाता है निष्काम भाव से यदि गायत्री का जप करे। किंतु ये बात नहीं कि एक प्रकार से वो दूसरों का भी उद्धार कर देता है। गीता के भी सबूत साफ यह बात बतराई है, गीता का जो मेरे भक्तों में प्रचार करता है वो मेरा अतिशय प्यारा काम करने वाला है, उसका और भक्तों का कल्याण हो जाता है। गीता का जो महात्म है उसमें तो इतनी प्रशंसा की गई है, सुनने वाले दंग हो जाते हैं। कोई कोई तो ये आकर्ष करते हैं और कोई कोई शंका करते हैं कि क्या इतनी बड़ी महिमा गीता की हो सकती है। किंतु याद रखना चाहिए जितनी महिमा शास्त्रों में गीता की बतराई है उससे भी बहुत अधिक है। वो तो परिमित ही बतराई है, गीता की जो महिमा तो अपरिमित है, कोई बतरा ही नहीं सकता, उसकी कोई इति नहीं है। जैसे भगवान से गुण अपार है, जैसे समझो कि भगवान का प्रभाव अपरिमित है, ऐसे गीता की महिमा भी अपरिमित है।
नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण ॐ ॐ ॐ पूर्णं पूर्णं अपारं शान्तं घनं मधुरं ध्रुवं नित्यं वरसुवां ज्ञानसुवां आनंदियं शांति शांति शांति।
भगवान के नाम जप स्वरूप के स्मरण का प्रकार और गीता जी की महिमा विषयक व्याख्यान पूज्य श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा सम्मत 2013 तदनुसार तारीख 3 दिसंबर 1956 को रात्रि के 8 बजे सम्मान श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर साहिबगंज गोरखपुर में दिया गया।